आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ग्वालियर में आज होगी तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री करेंगे 22 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण। देश में खरीफ फसलों की बुआई में हुई उल्लेखनीय प्रगति। अब तक कुल 1,065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई बुआई। प्रदेश के नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडौरी में खोले जाएंगे नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय। और पैरालंपिक खेलों का शुभारंभ आज पेरिस में होगा भारत का 84 सदस्यीय दल मुकाबले में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला में आज ग्वालियर में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले इस कॉन्क्लेव के लिए सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुबह 10:15 पर दंतोपन ठेंगड़ी सभागार में कॉन्क्लेव का उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर ग्वालियर चंबल अंचल की 10 औद्योगिक इकाइयों सहित प्रदेश की 22 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव प्रदेश में निरंतर होंगी।
लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है।
ग्वालियर कॉन्क्लेव में जाने माने उद्योगपतियों के अलावा आधा दर्जन देशों के ट्रेड कमिश्नर और औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होने आ रहे हैं। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार के मंत्री भी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। देश में इस साल खरीफ फसल की बुआई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक कुल 1,065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान बुआई का क्षेत्रफल लगभग 1,044 लाख हेक्टेयर था। धान की बुआई का क्षेत्र 394.28 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 378.04 लाख हेक्टेयर था। दलहन की खेती भी पिछले साल के 115.55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 122.16 लाख हेक्टेयर हो गई है। मोटे अनाजों तिलहन की बुआई में भी वृद्धि देखी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों के बड़े बिजली बकायेदारों के नाम की सूची तैयार कर ली गई है, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। प्रदेश के 3 शिक्षकों को इस साल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दी गई है। प्रदेश से चयनित शिक्षकों में शासकीय मिडिल स्कूल लिधौरा जिला दमोह के माधव प्रसाद पटेल और शासकीय हाई स्कूल खजुरिया सारंग जिला मंदसौर की सुनीता गोधा हैं। इसके अतिरिक्त डिंडौरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय धामन गांव की शिक्षिका सुनीता गुप्ता को भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है। चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडौरी में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कार्ययोजना बनाई जाएं, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएं। उन्होंने बताया कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। बैठक में विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने TWE OBD उद्योग समूह द्वारा स्थापित की जा रही हाइजीन नॉन वुमेन यूनिट का भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पूजन किया। उन्होंने आशा जताई है कि ये उद्योग समूह नॉन वुमेन फैब्रिक की और भी यूनिट्स प्रदेश में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने TWE OBT को कालीन निर्माण जैसे रोजगार आधारित इकाई भी मध्य प्रदेश में लगाने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत इंदौर जिले के बुजुर्गों को रामेश्वरम की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए इंदौर से 21 सितंबर को विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा का सभी खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। यात्रा के इच्छुक 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंदौर जिले से 300 यात्रियों को यात्रा कराने का लक्ष्य है। ये ट्रेन 25 सितंबर को वापस इंदौर आएगी। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के प्रबंधन की औषधि की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। ये सेंसर स्मार्टफोन आधारित और किफायती है। इसका उपयोग भी सरल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान ने बताया कि इस सेंसर की मदद से शरीर में एल-डोपा की सही मात्रा का पता लगाया जा सकेगा। उसके आधार पर पार्किंसंस रोग को नियंत्रित करने की दवा की आवश्यक मात्रा निर्धारित की जा सकेगी। पैरालंपिक 2024 खेलों का शुभारंभ आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह 8 सितंबर तक चलेगा। पेरिस पैरालंपिक में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट का दल प्रतिस्पर्धा करेगा। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 22 खेलों में से 12 में प्रतिस्पर्धा करेगा। पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडू और पैरा रोइंग में भारतीय एथलीट पहली बार प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में पीएम जनमन योजना के तहत ग्राम उमरी में बड़ा आयोजन प्रस्तावित है। इस आयोजन में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है। खरगोन जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। डिंडौरी में जिला प्रशासन द्वारा बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। रतलाम में कल शासकीय आईटीआई रतलाम में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे। राजगढ़ में कल कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्ष की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। मुरैना में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कल 102 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को सुना। शिवपुरी में एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आज 1 दिवसीय विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी स्थित राष्ट्रीय कुनो उद्यान में कल एक चीते की मौत हो गई। कुनो में खुले जंगल में विचरण कर रहे नामीबियाई नरचीता पवन का शव बरसाती नाले के पास मिला है। इंदौर जिले के आवासीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में सत्र 2025-26 कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निवाड़ी में कलेक्टर ने कल बहेरा, टहरका, बर्रईपुरा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण कर राजस्व अभियान 2.0 में प्रगति की समीक्षा की। पन्ना में कल जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर जिजित्सु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। धार्मिक खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा कल से 31 अगस्त तक विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।